पृष्ठ संख्या 616। फारसी साहित्य में प्रचलित कुछ मुख्य काव्य रूढ़ियाँ अरबी लिपि की वर्णमाला के क्रम से। आबे हयात, अमृत। प्रसिद्धि है कि आबे हयात का पान करने से अमृत तो प्राप्त होता है। हजरत खिज्र ने आबे हयात पिया है और वे कियामत तक जीवित रहेंगे। प्रसिद्ध है कि सिकंदर से हजरत खिज्र की कहीं भेंट हो गई। सिकंदर ने उनसे आबे हयात तक ले जाने की प्रार्थना की। इस पर हजरत खिज्र सिकंदर को साथ लेकर आबे हयात की ओर चल दिए। जब आबे हयात के निकट पहुंचे तो कहते हैं कि 12-12 कोस तक अंधेरा ही अंधेरा था। 12 कोस के घने अंधकार को चीरकर जब सिकंदर चश्मे के किनारे पर पहुंचा तो हजरत खिज्र कहीं इधर उधर हो गए। सिकंदर ने देखा कि वृद्ध, पृष्ठ संख्या 617, कौवे जिनका रंग सफ़ेद पड़ चुका था, जब चश्मे में डुबकी लगाते थे तो काले रंग के होकर निकलते थे। यह देखकर सिकंदर भी डुबकी लगाने को था कि पास से एक बहुत बूढ़ा पुरुष प्रकट हुआ और सिकंदर को मना करने लगा कि इस चश्मे में मत कूदो, अन्यथा मुझ जैसी दुरावस्था हो जाएगी। न खाने का मज़ा रहेगा और न पीने का, और फिर मृत्यु मांगे से भी न आएगी। सिकंदर उस वयोवृद्ध की दुर्दशा को देखकर आबे हयात पीने से बाज रहा और अपनी सेना सहित लौट आया। आबे हयात के स्थान पर आबे बका, चश्मा ए हैवान, आबे खिज्र, चश्मा ए खिज्र, आबे हैवान, चश्मा ए जिंदगी आदि शब्द भी प्रयुक्त करते हैं। हाफिज का एक प्रसिद्ध पद्य देखिए, दोष वक्ते सहर अस गुस्सा नजातम दादद, वादरा जुल्मते शब आबे हयातम दादद। एक उपर्युक्त शेर में ज्ञान को आबे हयात कहा गया है क्योंकि इसको प्राप्त करके ख्वाजा हाफिज का नाम अमर हो गया। प्रथमतः कवि हाफिज बहुत ही साधारण कोटि की कविता लिखा करते थे जिसे सुनकर श्रोतागण खिल्ली उड़ाते थे, इस कारण वे परम दुखी रहते थे। एक दिन अत्यधिक व्यथित होकर एक सिद्ध फकीर बाबा कूही के मजार दो पर जाकर फूट फूट कर रोए। रात को सपने में देखा कि एक बुजुर्ग उनको एक ग्रास खिला रहे हैं और फरमाते हैं, जा अब तुझ पर ज्ञान के द्वार खुल गए हैं। नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे हजरत खिज्र हैं। प्रातः उठकर उन्होंने एक गजल कही जिसका प्रारंभ उक्त शेर से किया। इस उच्च कोटि की एक गजल को सुनकर सब पर उनका सिक्का बैठ गया। उपरोक्त तो प्रथम शेर का अर्थ है कि कल रात मुझे दुख से मुक्ति मिल गई और रात्रि के अंधकार में आबे हयात अमृत प्राप्त हुआ। एक दीवाने हाफिज मदबा ए मजीदी कानपुर पृष्ठ 136। दो समाधि भवन, इस शब्द का प्रयोग किसी बुजुर्ग की कद्र के लिए होता है, पृष्ठ संख्या 618। आबे हयात अंधेरे स्थान में है जिसे जुलमात एक कहा जाता है। कवि नजीरी ने आबे हैवान का उल्लेख इस प्रकार किया है, पए सिकंदर ब लबे चश्मा ए हैवा आवुर्द। दो अर्थात सिकंदर ने आबे हयात का पता चला लिया। कवि जायसी ने पद्मावत में आबे हयात अमृत का वर्णन किया है, परंतु कवि ने कल्पना से काम लेते हुए जुल्मात के स्थान पर कदली वन का प्रयोग किया है और लिखा है कि सिकंदर वहीं अग्नि के पहाड़ में जल कर राख हो गया। तुरुक जाए कहु मरे न धाई, हो ही इस्कंदर कैनाई, सुनी अमृत कदली वन धावा, हाथ न चढ़ा रहा पछितावा, औते ही दीप पतंग होई परा, अग्नि पहाड़ पाँव दे जरा। तीन वस्तुतः सिकंदर बाबिल 4 के स्थान पर 32 वर्ष की अवस्था में सन 323 ईस्वी पूर्व में ज्वर से मर गया। 5 एक गुजार बर जुल्मातस्त खिज्र राहे जो, दीवाने हाफिज कानपुर पृष्ठ 100। अर्थात तेरा मार्ग जुल्मात अंधकार लोक में है एक खिज्र की खोज कर। 2 गजलियाते नजीरी लाहौर मुबारक अली सन 1923 ईस्वी पृष्ठ 170। 3 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 219। 4 इराक का एक प्राचीन नगर जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व इराक की राजधानी था, अब खंडहर है, बगदाद से 60 मील दूर फुरात के किनारे था। उर्दू हिंदी शब्दकोश संकलनकर्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा खां मद्दाह वाराणसी सन 1959 ईस्वी पृष्ठ 438। 5 सर साइक्स पीए हिस्ट्री ऑफ पर्शिया लंदन सन 1951 ईस्वी भाग 1 पृष्ठ 279-280। आदम और हवा, जब हजरत आदम स्वर्ग में रह रहे थे तो एकाकी होने के कारण उन पृष्ठ संख्या 619 का मन उदास रहता था। प्रसिद्धि है कि उनका जी बहलाने के लिए खुदा ने उनकी स्त्री हवा का जन्म उनकी बाई पसली से किया। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार लिखते हैं, जन नजीदी तू की अज आदम बजाद एक, अर्थात क्या तूने नहीं सुना कि आदम से स्त्री हवा का जन्म हुआ। हिंदी सूफी कवि मंझन भी कहते हैं, बाएं अंग तिरिया अवतारू, संतत बाएं जान कुमारू। दो, आहरमन या अहरमन या अहरिमन और यजदान, आतिश परस्तो तीन, अग्नि पूजकों अर्थात जरदुष्टियों के मतानुसार अहरमन और यजदान दो शक्तियां हैं जिनका संसार पर अधिकार है। कभी एक का आधिपत्य होता है और कभी दूसरी का। इनमें से प्रथम शक्ति बदी 4 की है और दूसरी शक्ति नेकी 5 की। मौलाना निजामी लिखते हैं, बयजदा के आहरमनश दुश्मनस्त, बजरदुस्त कु खस्मे आहरमनस्त, कि अजरूमो रूमी न मानम निशा, शवम बसरे हरदो आतिश फिशा। 6, दारा कहता है, मुझे यजदा की कसम, आहरमन जिसका वैरी है, मुझे जरदुष्ट की सौगंध, जो आहरमन का शत्रु है, मैं यूनान और यूनानियों का नाम तक बाकी न छोड़ूंगा और दोनों के सिर पर आग बरसाऊंगा। 1, मंती कुतैर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 240। 2, मंझन कृत मधु मालती, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1961 ईस्वी, पृष्ठ 137। 3, जरदुष्ट अथवा जरतुष्ट आतिश परस्ती का प्रवर्तक था। 4, बुराई। 5, अच्छाई। 6, सिकंदर नामा, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1876 ईस्वी, पृष्ठ 96। पृष्ठ संख्या 320, आईना 1, ए सिकंदर। प्रसिद्धि है कि सिकंदर ने सर्वप्रथम दर्पण बनवाया था। 2, मौलाना निजामी ने सिकंदर नामा में इस संबंध में लिखा है, नबूद आईना पेश अजु साख्ता, ब तदबीरे उ गश्त पद परदाख्ता। 3, अर्थात सिकंदर से पूर्व दर्पण नहीं था, उसी सिकंदर के प्रयत्न तथा युक्ति से बनवाया गया। सिकंदर ने हकीम बलिनास अथवा बलिनूस 4 के परामर्शानुसार स्कंदरिया में एक महान मीनार बनवाया था जो 300 गज ऊंचा था। उसने उस पर एक दर्पण लगवाया था जिसकी परिधि 21 गज की और व्यास 7 गज का था। वह आईना दूरबीन 5 का काम देता था। जब उसमें से देखते थे तो कुस्तुनतुनिया का सारा नगर आंखों के सामने नजर आता था। समुद्र में कई मीलों से आते हुए जलपोतों का प्रतिबिंब दर्पण में दृष्टिगोचर होता था। सिकंदर के दर्पण का वर्णन करते हुए ख्वाजा हाफिज लिखते हैं, आईना ए सिकंदर जामेजम अस्त बेंगर, तावर तू अर्जा दारद अहवाले मुल्के दारा। 6, अर्थात जमशेद का प्याला 7 सिकंदर के दर्पण के समान है, उसमें देख ताकि तुझ पर दारा के देश के हालात प्रकट हो जाएं। 1, दर्पण। 2, यह ठीक नहीं क्योंकि मिस्र के मकबरों में से सिकंदर से प्राय 1000 वर्ष पहले के दर्पण निकले हैं। 3, सिकंदर नामा, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1876 ईस्वी, पृष्ठ 78। 4, बलिनास अथवा बलिनूस सिकंदर के दरबार में सुप्रसिद्ध हकीम विचारक था। 5, दूरवीक्षण यंत्र। 6, दीवाने हाफिज मतबाए मजीदी, कानपुर, पृष्ठ 4। 7, जमशेद बादशाह के पास एक प्याला था जिसके संबंध में प्रसिद्ध है कि उसमें एक बार देख लेने से समस्त संसार के समाचार ज्ञात हो जाते थे। पृष्ठ संख्या 621। फारसी कवि जम शब्द का प्रयोग बादशाह जमशेद, सिकंदर महान एवं हजरत सुलेमान तीनों के लिए करते हैं, अतएव आईना ए सिकंदर को आईना ए जम भी कहते हैं। 18 सहस्त्र जीव जंतु। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रसिद्धि है कि जीव जंतुओं की जातियों की संख्या 18,000 है। हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां मानी जाती हैं। जैसी 18,000 जीव जंतुओं का उल्लेख किया है, अतः इस संबंध में कवि में इस्लामी दृष्टिकोण का आग्रह परिलक्षित होता है। उदाहरण, किन्हेसी सहस 18 बरन बरन उपराजी, भुगुति दिहेसी पुनि सबन कह, सकल साजना साजी। 1, अफलातून प्लेटो 428 27 ईस्वी पूर्व से 348 ईसा पूर्व। दो, अफलातून अथवा फ्लातून। तीन, यूनान का एक सुविख्यात दार्शनिक था। वह प्रख्यात विचारक अरस्तातालिस या अरस्तु या अरिस्तो का गुरु तथा सुकरात का शिष्य था। प्रसिद्ध है कि अफलातून अपनी आयु के अंतिम दिनों में एक खुम मटका में बैठ गया और उस खुम को एक पर्वत की गुफा में रख दिया गया। ख्वाजा हाफिज लिखते हैं, जुज फलातूने खुम निशीने शराब सिर्रे हिकमत बमा केह गोएद बाज। चार, एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ दो। दो, हिंदी विश्वकोश नागरी विचारणी सभा वाराणसी संवत 2017 विक्रम खंड एक पृष्ठ 151। तीन, उसका मूल ग्रीक भाषा का प्लाटोन है। इसका अंग्रेजी रूपांतर प्लेटो और अरबी रूपांतर अफलातून है। वही पृष्ठ 151। चार, दीवान हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 237 पृष्ठ संख्या 622। अर्थात शराब के मटके में बैठने वाले अफलातून के अतिरिक्त दर्शन की बातें हमसे कौन विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकता है। उक्त प्रसिद्धि के संबंध में मौलाना शिबली का कथन है कि खुमे अफलातून जो मशहूर है इसमें जरा सी गलती हो गई है। देवजानस हकीम एक हकीम था जो एक पीपा अपने पास रखता था और रात को उसी में सो रहता था। फारसी में पीपा को खुम कहते हैं। गलती से देवजानस के बजाय खुमे अफलातून मशहूर हो गया। एक, जो कुछ भी हो फारसी साहित्य में खुमे अफलातून ही की प्रसिद्धि है और इसी का उल्लेख कवियों ने किया है। अनल हक। दो, मंसूर हल्लाज। अनल हक अथवा अनल हक मैं खुदा हूँ यह मंसूर का घोष था। मंसूर का यथार्थ नाम हुसैन इब्न मंसूर था। इब्न का अर्थ है पुत्र। अतः सिद्ध सूफी का नाम था हुसैन और उनके पिता का नाम था मंसूर, परंतु वे अपने पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता का नाम ही चमका दिया लेकिन आप अज्ञात हो गए। उन्हें हल्लाज कहा जाता है। हल्लाज अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है धुनिया। उनका व्यवसाय रुई धुनना नहीं था, वस्तुतः उनका एक मित्र धुनिया था। वे प्रायः उसकी दुकान पर बैठकर उंगलियों के साथ रुई बिनौलों से जुदा करते रहते थे। इसी कारण उन्हें सब हल्लाज धुनिया कहने लगे। एक, वे प्रभु प्रेम सागर में इतने निमग्न हुए कि अपने आप को भुला बैठे। अपने भीतर और बाहर उन्हें अल्लाह की जात दृष्टि गोचर होने लगी और वे अनल हक मैं खुदा हूँ पुकार उठे। एक, मौलाना शिवली शेरुल अजम भाग चार लखनऊ सन 1912 ईस्वी पृष्ठ 134। दो, सोहम। तीन, रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर संपादक तथा अनुवादक मौलवी महमूदुल हसन लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श पृष्ठ 17। यह घोषणा इस्लामी धर्म के पृष्ठ संख्या 623 विरुद्ध थी, इसलिए उन्हें सन 922 ईस्वी 1 में बगदाद के खलीफा अब्बासी उल मक्तदिर की आज्ञा से सूली पर चढ़ा दिया गया। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर लिखते हैं, मंसूर हल्लाज आ नहंगे दर्या कज पम्बा ए तन दाना ए जा कर्द जुदा रोजे की अन लहक ब जबा भी आबुर्द मंसूर कुजा बूद खुदा। दो, अर्थात तसव्वुफ के सागर के मकर मंसूर हल्लाज जो शरीर की रुई से आत्मा के बिनौले पृथक कर चुके थे ने जिस दिन अल्लाह की रट लगाई थी उस दिन मंसूर कहाँ था, खुद खुदा ही था। सूफी कवि महमूद शबिस्त्री कहते हैं, रवा बाशद अनल हक अज दरख्ते चरा न बवद रवा अज नेक बख्ते। तीन, उपर्युक्त शेर से संबंधित कथा इस प्रकार है कि यहूदियों के पैगंबर मूसा का पर्वत तूर पर एक हरे भरे वृक्ष पर प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। उसे देखकर वे चकित रह गए। वे उसकी ओर गए तो आवाज आई, ए मूसा मैं तेरा रब हूँ। कवि का विचार है कि हजरत मूसा ने वृक्ष पर जो प्रकाश देखा था वह खुदा का न था अपितु वृक्ष ही से अनल हक की आवाज आई थी। जब वृक्ष खुदा के आलोक से आलोकित होकर खुदाई का दावा कर सकता है तो मानव जो परमात्मा के गुण आदि का द्योतक होने के कारण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है ऐसा अनल हक का दावा क्यों कर नहीं कर सकता। एक, सैयद आबिद अली आबिद, तलमिहाते इकबाल, हिस्सा ए फारसी, लाहौर, सन 1959 ईस्वी, पृष्ठ 12। 2. रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर, संपादक तथा अनुवादक मौलवी महमूदुल हसन, लाहौर, पृष्ठ 17। 3. गुलशन ए राज, अनुवादक मौलवी अहमद हसन, दिल्ली, भूमिका, पृष्ठ 2। पृष्ठ संख्या 624। हिंदी सूफी कवि जायसी लिखते हैं, प्रेम पहार कठिन विधि गढ़ा, सोपे चढ़े जो सिर सौ चढ़ा, पंथ सूर्य के उठा अंकुरु, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरु। 1. रत्नसेन सूली खंड में कवि जायसी कहते हैं, जस मारे कह बाजा तूरु, सूरी देखी हंसा मंसूरु। 2. बागे इरम या शद्दाद, बागे इरम, गुलजारे इरम, बहिश्ते इरम, बहिश्ते शद्दाद या बागे शद्दाद को आद कौम के काफिर बादशाह ने बहिश्त की नकल पर कोहस्ताने यमन में निर्मित करवाया था। उसमें अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष और अनुपम भवन थे। उसमें हूरों के स्थान पर सुंदर नारियां और गिलमानों की जगह रूपवान तरुण नियुक्त किए। बाग तैयार हो चुका तो वह घोड़े पर सवार होकर बाग के द्वार पर पहुंचा। जब उसका एक पांव बागे इरम के अंदर और एक बाहर था तो उसके प्राण निकल गए। मौलाना जामी ने जुलेखा के मुख की उपमा बागे इरम के साथ देते हुए लिखा है, जे बुस्ताने इरम रुएश नमूना, दरु गुलहा से गुफ्ता गुना गुना। 3. अर्थात जुलेखा का मुखमंडल बागे इरम का नमूना है, जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। खाजू किरमानी ने शद्दात के विषय में लिखा है, आकी शद्दाद दर ईवान जे जर अफ गंदे हिष्ट, हिष्टे ईवाने शह अकनु जे सरे शद्दाद अस्त। 4. 1. जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 51। 2. वही पृष्ठ 111। 3. यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस कानपुर सन 1896 ईस्वी, पृष्ठ 49। 4. आईना ए दानिश संपादक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, लाहौर, सन 1946 ईस्वी, पृष्ठ 178। पृष्ठ संख्या 625। अर्थात शद्दाद अपने भवन में सोने की ईंटें लगवाया करता था। आज के बादशाह प्रसाद की ईंटें उसी शद्दाद के सिर से बनी हुई हैं। कवि जायसी ने आखिरी कलाम में शद्दाद के बाग और उसकी मृत्यु का वर्णन इस प्रकार किया है, जो शदाद बैकुंठ समारा, पैठत पौर बीच गही मारा। 1. कहते हैं कि शदाद के मरणोपरांत बागे इरम को भूमि से उठा लिया गया और बिहिश्त और दोजख के मध्य रख दिया गया। अब यह अराफ नाम से प्रसिद्ध है। 2. कवि नजेरी ने अराफ के विषय में लिखा है, कसे की तिफल बमीरद मकामश अराफस्त। 3. अर्थात वह जो बाल्यावस्था में मर जाता है उसको अराफ में स्थान दिया जाता है। बुताने आजरी। 4. आजर हजरत इब्राहिम का पिता और तत्कालीन नास्तिक बादशाह नमरूद का जामाता था। वह अपने समय का बहुत बड़ा बुत तराश 5 था। हजरत इब्राहिम एकेश्वरवाद के अमित समर्थक थे, अतएव उन्होंने अपने पिता के बुतों को टूक टूक कर दिया। जब नमरूद ने यह सुना तो आग बबूला हो गया। उसने उनको जीवित ही जला देने का आदेश दिया। अतः आज्ञानुसार हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। 1. जायसी ग्रंथावली आखिरी कलाम पृष्ठ 341। 2. मौलाना वहीदुद्दीन सलीम इफादाते सलीम हैदराबाद, पृष्ठ 146। 3. गजलियाते नजीरी लाहौर मुबारक अली, सन 1923 ईस्वी, पृष्ठ 56। 4. आजर के बनाए हुए बुत, बुतान बराबर बुत मूर्ति का बहुवचन। 5. मूर्तिकार, परंतु पृष्ठ संख्या 626। ईश्वर की असीम एवं अपार कृपा से वही आग उनके लिए फूलों की सेज बन गई। उदाहरण, बारे गरत बघोरे अजीजा गुजर बवद, अज सर बनी है गुरूरे कयानी ओ सरवरी, कांजा बदस्ते वाकिया बीनी खलील बार, दरहम शिकस्ता सूरते बुथाए आजरी। 1. अर्थात यदि तुझे कभी प्रिय स्वजनों की कब्रों के पास से गुजरना पड़े तो तू अपने सिर से राज्याधिकार और सरदारी का अभिमान निकाल देगा, क्योंकि उस जगह तू आदर के बूतों की शक्लें मौत के हाथों हजरत इब्राहिम की तरह टूटी फूटी हुई देखेगा। पुले सिरात, वह पुल जिसे कयामत के दिन सब प्राणियों को पार करना पड़ेगा। पुल बाल से अधिक बारीक और तलवार से अधिक तेज होगा। जब पुण्यात्मा गुजरेंगे तो यह पुल चौड़ा हो जाएगा और वे बिजली की भांति गुजरकर आसानी से स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु जब पापी गुजरेंगे तो वे कट कट कर दोजख की आग का ईंधन बन जाएंगे। सर्वप्रथम हजरत उमर दो पुले सिरात को पार करेंगे। आकी दारद बर सिरात अव्वल गुजर हस्त उ अस्कौले तैगम्बर उमर तीन, अर्थात हजरत मोहम्मद के वचनानुसार वह व्यक्ति जो पुले सिरात पर सबसे पहले गुजरेगा वह हजरत उमर ही होगा। कवि जायसी ने आखिरी कलाम के पुले सिरात का उल्लेख इस प्रकार किया है। एक, शेख सादी मवाइजे सादी तेहरान 1320 पृष्ठ 76-77। दो, इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा। तीन, ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 26 पृष्ठ संख्या 627। जेतने परे सब सबही उठावो पुल सरात कर पंथ रे गावो। एक, तख्ते सुलेमान दो, प्रसिद्धि है कि हजरत सुलेमान का सिंहासन वायु में उड़ा करता था। शेख सादी लिखते हैं, न खुद शरीरे सुलेमान बवाद रखतीयो बस की हर कुजा की मरी रिस्त में रवत बर्बाद। तीन, अर्थात न केवल हजरत सुलेमान का सिंहासन ही वायु में उड़ा करता था बल्कि जहाँ कहीं भी कोई सिंहासन है हवा में उड़ जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। आशा यह है कि हजरत सुलेमान का सिंहासन जो हवा में उड़ा करता था आज नहीं रहा। इसी प्रकार अन्य बादशाहों के सिंहासन भी नहीं रहेंगे। संसार में किसी की शक्ति या ज्ञान हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहती। भारतीय साहित्य में भी इसी प्रकार की प्रसिद्धि प्रचलित है कि इंद्र का सिंहासन वायु में उड़ा करता था। जामे जम चार, जमशेद बादशाह के पास एक प्याला था जिसके संबंध में प्रसिद्धि है कि उसमें एक बार देख लेने से समस्त संसार के समाचार ज्ञात हो जाते थे और भावी स्थिति का भी ज्ञान हो जाता था। प्रसिद्धि है कि उस पर रेखाएं आदि अंकित थी जिनके द्वारा नक्षत्रों की गति आदि का पता चलता था। उस प्याले को जामे जहानुमा एवं जामे जहाबीन भी कहा जाता है। एक, जायसी ग्रंथावली आखिरी कलाम पृष्ठ 347। दो, हजरत सुलेमान का सिंहासन। हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के पुत्र थे, वे हजरत ईसा प्रायः 1000 वर्ष पहले हुए। तीन, शेख सादी मवाइजे सादी तेहरान 1920 पृष्ठ 86। चार, जय जयशेद बादशाह का प्याला पृष्ठ संख्या 628। कहते हैं कि जमशेद बादशाह ने अंगूरी शराब का आविष्कार किया था और वह उसी प्याले में मदिरा पान किया करता था। जामे जम के विषय में ख्वाजा हाफिज ने लिखा है, आईना ए सिकंदर जामे जम अस्त बेंगर ताबर तो अजी दारद अहवाले मुल्के दारा। एक, अर्थात जमशेद बादशाह का प्याला सिकंदर का दर्पण दो है, उसमें देख ताकि तुझ पर दारा के देश के हालत मालूम हो जाए। सैयद मीर हाज उन्सी तीन का शेर देखिए, दर गर्दिश आर साकी जामे जहां नुमारा ताबर तू राजे पिन्हा गर्दा नद आशकारा। चार, अर्थात ए साकी जामे जहानुमा को जरा फिरने दे ताकि वह गुप्त रहस्य प्रकट कर दे। जिब्राइल, ये फारसी कवियों के प्रिय फरिश्ता हैं क्योंकि वे इन्हें अपना संदेश वाहक समझते हैं। कवि समय के अनुसार हजरत जिब्राइल कवियों तक गैब से संदेश भाव आदि पहुंचाते हैं। ये अक्ल के फरिश्ता हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि ये हजरत मोहम्मद के पास वही प्रभु का संदेश लाया करते थे। सब कवि इस प्रसिद्धि का भी उल्लेख करते हैं कि हजरत जिब्राइल का निवास स्थान सातवें आकाश पर सिद्रातुल मुंतहा बेरी का वृक्ष है, ये इससे आगे नहीं जा सकते। एक, दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 4। दो, सिकंदर ने इस्कंदरिया में एक महान दर्पण लगवाया था जिसमें उसके शत्रु दारा के देश में होने वाला सभी कुछ प्रतिबिंबित होता था। तीन, सैयद साहिब कसीदों में हाज और गजलों में उनसे तखल्लुस उपनाम करते थे। चार, सकीना ए अदब संपादक फजल हक लाहौर सन 1941 ईस्वी पृष्ठ 244 पृष्ठ संख्या 629। इनको मुर्गे सिद्रा एक, बुलबुले सिद्रा, ताइरे सिद्रा दो, सिद्रा नशीन, जिब्राइल अमीन, जौहरे अव्वल, अकले कुल, रूहे कुदस, ताहरे कुदस, रूहे अमीन, नामूसे अकबर, नामुसे आजम, फिरिश्ता ए वही आदि भी कहते हैं। उदाहरण क, गर्चे मन जिब्राइले मुर्गा नमो लेख, रफ्त बर मन अस कजाकारे ननेक। 3, मयूर कहता है कि यद्यपि पक्षियों में मेरा वैसा ही स्थान है जैसा कि फरिश्तों में हजरत जिब्राइल का, तथापि दुर्भाग्यवश मुझे कष्ट का सामना करना पड़ा, मैं शैतान का मित्र बन गया, फलतः मुझे जन्नत से निकाल दिया गया। ख, बस्ता ए दामे कफस बाद चू मुर्गे वहशी, तायरे सिद्रा अगर दर तलबत सायर नीस्त। 4, अर्थात यदि तायरे सिद्रा हजरत जिब्राइल तेरी खोज में संदेश देने के लिए नहीं घूम रहा, तो हे कवे, तू जंगली चिड़िया की भांति पिंजरे के जाल में बंदी हो जा। ग, हजरत मोहम्मद जब सो रहे थे तो हजरत जिब्राइल उनके पास आए और मेराज 5 के लिए अनुरोध किया। इस संबंध में मौलाना जामी लिखते हैं, दर आमद नागहा नामुसे अकबर, सबू कतरो अजी ताउसे अखजर। 6, 1, मुर्ग पक्षी, सिद्रा सिद्रा तुल मुंतहा, मुर्गे सिद्रा सिद्रा का पक्षी। 2, तायर पक्षी, ताहरे सिद्रा का पक्षी। 3, ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 50। 4, दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर, पृष्ठ 87। 5, हजरत मोहम्मद का खुदा के पास दर्शनार्थ ऊपर जाना। 6, यूसुफ जुलेखा, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1896 ईस्वी, पृष्ठ 17, पृष्ठ संख्या 630। अर्थात तेज गति से फिरने वाले सब्ज रंग के मयूर आकाश से भी अधिक तेजी के साथ सहसा ताउसे अकबर हजरत जिब्राइल हजरत मोहम्मद के पास आए। कवि जायसी लिखते हैं, जिब्राइल पृथ्वी मह आए, आई मोहम्मद कहाँ गोहराए। 1, जुए शीर। 2, प्रसिद्धि है कि फरहाद बेसुतूने पर्वत से शीरी के महल तक पहाड़ को खोद कर जुए शीर लाया था। फरहाद ईरान के बादशाह खुसरो परवेज 3 की मलिका, 4 शीरी का सच्चा प्रेमी था। उसे पीछा छुड़ाने के लिए खुसरो परवेज ने फरहाद से कहा कि बेसुतून पर्वत से शीरी के प्रसाद तक जुए शीर ले आओ तो तुम्हें शीरी मिल जाएगी। वह अपना तेशा 5 उठाकर कटिबद्ध हो गया और पहाड़ काटने लगा। पत्थर काटने के समय वह प्रेम की धुन में प्रत्येक स्थान पर शीरी की प्रतिमाएं भी बनाता जाता था। अंततः उसने इस कार्य को पूर्ण कर दिया। जब शीरी के पति ने देखा कि कार्य संपन्न हो गया तो उसने शीरी के चल बसने की खबर उड़ा दी। यह सुनते ही फरहाद ने वही तेशा जिससे पहाड़ काटा करता था अपने सिर में मार लिया और वहीं ढेर हो गया। शीरी को जब पूरी बात ज्ञात हुई तो उसने भी आत्महत्या कर ली। उदाहरण, कोहकन रा खुद ब नाखून संग भी बायद बुरीद, जुए शीरो नक्शे शीरी कारे हर मजदूर नीस्त। 6, 1, जायसी ग्रंथावली आखिरी कलाम, पृष्ठ 347। 2, दूध की नहर। 3, खुसरो परवेज न्यायशील बादशाह नौशीरवान का पौत्र था। वह सासानी वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। उसका शासनकाल सन 590 ईस्वी से सन 628 ईस्वी तक था। 4, रागी। 5, खनित्र। 6, कवि नजीरी गजलियाते नजीरी लाहौर, मुबारक अली, सन 1923 ईस्वी, पृष्ठ 63, पृष्ठ संख्या 631। अर्थात पहाड़ को काटने वाले फरहाद 1 को चाहिए था कि नाखूनों से पत्थरों को काटता। दूध की नहर और सुंदर प्रतिमाएं बनवाना हर मजदूर का काम नहीं। साहित्य में जुए शीर का अर्थ कठिन कार्य या टेढ़ी खीर लेते हैं। चाहे बाबिल 2, हारूत व मारूत जुहरा। हारूत और मारूत दो फरिश्तों के नाम हैं। एक बार उन्होंने यह डींग मारी कि मनुष्य तो संसार में विषय वासनाओं के शिकार हो जाते हैं, परंतु यदि हम वहां जाएं तो ऐसे निर्लिप्त रहें जैसे जल में कमल। प्रभु ने परीक्षा लेने के लिए उन्हें संसार में भेजा। पहले पहल तो वे सांसारिक प्रलोभनों से अछूतो रहकर आराधना में तल्लीन रहे, किंतु कालोपरांत एक नर्तकी एवं गायकी पर आसक्त हो गए। उसका नाम जुहरा था। वह लावण्यमयी और जादू टोना में निपुण थी। उसने फरिश्तों से आकाश पर जाने की कला प्राप्त की और इसके बदले में उनको जादू सिखाया। इस पर खुदा ने हारूत और मारूत को दंड स्वरूप बाबिल के कुएं में उल्टा लटका दिया। प्रसिद्धि है कि आज भी वे वहीं उसी अवस्था में हैं। समस्त संसार का धुआं उस कुएं में जाता है और उनके नथनों में प्रविष्ट करता है तथा उनको कष्ट देता है। यदि उनसे कोई जादू सीखना चाहे तो वे सिखा देते हैं। यह भी प्रसिद्धि है कि उपर्युक्त सुंदरी इस घटना के अनंतर तीसरे आकाश पर चली गई और जुहरा 3 नामक सितारा बन गई। इन्हीं प्रसिद्धियों के आधार पर लिखे हुए कुछ शेर देखिए। क हारूत रा की हल्के जहां सिहर अजू बुरंद दर्चे फगंद गमजा ए खूबा बसाहिरी। 4-1 पहाड़ काटने के कारण फरहाद को कोहकन पहाड़ काटने वाला कहा जाता है। 2 बाबिल का कुआं। 3 शुक्र ग्रह इसे रक्कासा ए फलक आकाश की नर्तकी या मुतरिबा ए फलक आकाश की गायकी भी कहते हैं। 4 शेख सादी मवाइजे सादी तेहरान सन 1320 पृष्ठ 75 पृष्ठ संख्या 632। अर्थात जुहरा जैसे सुंदर व्यक्तियों के हाव भाव ने अपनी जादूगरी से हारूत को मारूत सहित कुएं में गिरा दिया जिसे आज भी सांसारिक प्राणी जादू सीखते हैं। ख गर बायदम सुदन सुए हारूते बाबिली सदगुना साहिरी बकुनम ता बयारमत। 1 अर्थात यदि मैं बाबिल के हारूत की ओर चला जाऊं तो 100 प्रकार के जादू सीख कर आऊं। ग दर आसमा चे अजब गर्जे गुफ्ताए हाफिज समाए जुहरा बरकस आवर्द मसीहा रा। 2 अर्थात यदि आकाश पर जुहरा 3 के हाफिज की गजल को गाने से हजरत ईसा 4 नृत्य करने लग जाएं तो यह कोई विचित्र घटना न होगी। चनार कवि प्रसिद्धि है कि चनार नामक वृक्ष से आग झड़ती है। इस वृक्ष के बड़े बड़े पत्ते मनुष्य के पंजों के आकार के होते हैं। कवि उर्फी लिखते हैं, चुनी की नाला जे दिल जोश दो नफस न जनम अजब मदार गर आतश बर आवरम चू चनार। 5 अर्थात मेरे भीतर नाला ए आतशी अग्निमय आर्तनाद उबल रहा है परंतु मैं मूक हूँ। इसको रोक रोक कर यदि मुझसे भी चनार की भांति आग निकलने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य न होगा। 1 दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 42। 2 दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 11। 3 जुहरा तीसरे आकाश पर है। 4 हजरत ईसा चौथे आकाश पर हैं। 5 कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 15 पृष्ठ संख्या 633। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि जौक ने भी लिखा है, बुझने की दिल की आग नहीं जरे खाक भी होगा दरख्त गौर 1 पे मेरी चनार का। 2 चूहा और धन प्रसिद्धि है कि चूहा पहले एक इंसान था। उसके दिल में रुपए पैसे का बहुत लालच था इसलिए उसका आकार छोटा करके उसे वर्तमान रूप में कर दिया गया। इस संबंध में ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार ने एक कथा वर्णित की है जिसका आरंभ इस प्रकार है, हुक्का ए जर दाश्त मर्दे बेखबर चुब मुर्द अजवे बमाद आ हुक्का ए जर बाद साले दीद फर्जरदश बखाब सूरतश चुमूश दो चश्मश पुर आब पसदरा मौजा के जर बनिहादा बूंद हमचो मुशे गिरदे आमी गश्त जूद। 3 अर्थात एक बेसमझ पुरुष के पास सोने से भरी हुई डिबिया थी। जब वह मर गया तो वह सोने की डिबिया उसी प्रकार रखी रही। एक वर्ष के उपरांत उसके पुत्र ने अपने पिता को स्वप्न में देखा। उसका रूप चूहे सा हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उस स्थान पर जहां उसने सोना छिपाया हुआ था वह चूहे की भांति तेजी से चक्कर लगा रहा था। पुत्र ने अपने पिता से वहां चक्कर काटने का कारण पूछा। पिता ने उत्तर दिया कि उसने उस स्थान पर सोना छिपा रखा था, ज्ञात नहीं कि किसी को उसका पता भी है या नहीं। 1 कब्र। 2 दीवाने जौक संपादक मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद दिल्ली सन 1922 ईस्वी पृष्ठ 67। 3 मंत्री कुत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 64। तत्पश्चात पुत्र ने पूछा कि उसका पृष्ठ संख्या 634 रूप चूहे जैसा क्यों हो गया है। पिता ने उत्तर में कहा कि ऐसा रूप प्रत्येक उस व्यक्ति का बन जाता है जो सोने चांदी से मोह करता है। 1 चीता और चांद प्रसिद्धि है कि चीता चांद की सुंदरता पर विमुग्ध हो जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए पर्वत पर चढ़ जाता है। वहां से ऊपर छलांग लगाता हुआ नीचे आ गिरता है। उदाहरण, रफ्तम अंदर पए मकसूद बले हमचू पलग बसरे कोह बकरूदे महेताबा रफ्तम। दो, अर्थात मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गया, परंतु चीते की भांति पर्वत की चोटी चमकते हुए चांद को प्राप्त करने के उद्देश्य से गया। भाव यह है कि मैं प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य को उसी प्रकार पा न सका जिस प्रकार चीता चांद को आज तक प्राप्त नहीं कर सका। हातिम या हातम ताई, प्रसिद्धि है कि हातिम अथवा हातम दानशीलता में अद्वितीय था। इसे अरबी में हातिम कहते हैं और फारसी में हातम। वह अरब देश का सुप्रसिद्ध दानी, परोपकारी और उदार महापुरुष था। वह तय कबीला से था, इसलिए उसे हातिम अथवा हातम ताई कहते थे। एक मुहावरा हातिम की कब्र पर लात मारना प्रचलित है, जिसका अर्थ है बहुत अधिक उदारता या परोपकार करना। व्यंग, उसकी दानशीलता के संबंध में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि उसके पास एक अत्यंत सुंदर घोड़ा था। जब कोई भी उसके पास आता था तो उसे वह घोड़ा दिखाया करता था। एक बार रात्रि के समय उसके यहाँ एक अतिथि आया। अतिथि के खाने के लिए कुछ भी न था। हातिम ने उसी घोड़े को जब्ह कर डाला। एक, वही पृष्ठ 64। दो, कवि उर्फी कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 43। पृष्ठ संख्या 635। कवि नजीर ने उसकी दानशीलता के संबंध में लिखा है, रफ्त दौराने हातमो कसरा। एक, मांद अज अदलो जूदे शांत इमसाल। दो, अर्थात हातिम और कसरा का युग व्यतीत हो गया, उनकी न्याय प्रियता और दानशीलता के उदाहरण शेष रह गए। हिंदी सूफी कवियों ने भी हातिम हातम की उक्त प्रसिद्धि का उल्लेख किया है। कुछ उदाहरण देखिए। क, बलि विक्रम दानी बड़ कहे हातिम करन त्यागी अहे। तीन, शेर शाही सरी पूज न को समुद्र सुमेर भंडारी दो। ख, हातिम करण दिया जो सीखा दिया रहा धर्मन मह लिखा। चार, ग, दान निशान सरग गय बाजे हेतिम करण भोज बलि लाजे। पाँच, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, प्रसिद्धि है कि हजरत इब्राहिम के लिए अग्नि फूलों की सेज बन गई थी। प्राचीन युग में हजरत इब्राहिम के समय में इराक देश में एक अत्याचारी शासक शासन करता था। अहंकार का साकार रूप था। वह अपनी प्रजा से अपनी प्रतिमाओं की उपासना करवाया करता था। हजरत इब्राहिम ने उसे एक प्रभु की उपासना के लिए उपदेश दिया, परंतु नमरूद ने उनकी एक न सुनी अपितु उनकी खिल्ली उड़ाई। परम दुखी होकर हजरत इब्राहिम ने एक दिन बुतों को तोड़ डाला। एक, नौशिरवान प्रसिद्ध ईरानी बादशाह सन 531 ईस्वी 578 ईस्वी। वह अत्यंत न्यायकारी था, इसी से उसका विरुद्ध आदिल न्यायवान हुआ। दो, गजलियाते नजीरी लाहौर मुबारक अली सन 1923 पृष्ठ 180। तीन, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 7। चार, वही पृष्ठ 61। पाँच, मंझनकृत मधुमालती इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 12। क्रुद्ध होकर बादशाह ने हजरत इब्राहिम को जीवित ही जला पृष्ठ संख्या 636 देने का आदेश दिया। हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया गया, परंतु चिता उनके लिए फूलों की सेज बन गई। इसलिए हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह अर्थात प्रभु का मित्र भी कहते हैं। फारसी साहित्य में इस घटना की ओर संकेत करने के लिए नारे खलील, गुलजारे खलील, गुलजारे इब्राहिम, आतिशे नमरूद आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। ख्वाजा फरीदुद्दीन लिखते हैं, गर्चे मंजिलगाहे उदर नार कर्द नार रा अजलुत से खुद गुलजार कर्द। एक, यद्यपि नमरूद ने उनका अर्थात हजरत इब्राहिम का स्थान आग में बनाया, परंतु प्रभु ने अपनी कृपा से आग को पुष्प वाटिका बना दिया। मौलाना जामी ने यूसुफ जुलेखा में हजरत इब्राहिम के लिए खलीलुल्लाह का प्रयोग किया है। खलील अजवे नसीमे याफ्त कातिश बेरू शुद्ध चू गुलिस्तान खुर्रमो खुश। दो, अर्थात आग में बैठे हुए खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम ने उस हजरत मोहम्मद से नसीम शीतल मंद समीर पाई, जिसके प्रभाव से आग भी पुष्प वाटिका की भांति उस हजरत इब्राहिम के लिए सुखदायक बन गई। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में इस संबंध में एक कथा दी है। वे लिखते हैं कि एक दिन खुदा ने इज़राइल फरिश्ते 3 से पूछा कि प्राण निकालते समय तुझे सबसे अधिक किस पर दया आई। फरिश्ते ने उत्तर दिया कि एक बार एक नौका को जो तेज तरंगों पर बहती जा रही थी मैंने तुम्हारी आज्ञानुसार टूक टूक कर दिया। एक, मंतिक उत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 10। दो, यूसुफ जुलेखा कानपुर सन 1869 ईस्वी पृष्ठ 14। तीन, वह फरिश्ता जो प्राण निकालने पर नियुक्त है। त, तदनंतर तुम्हारे आदेशानुसार पृष्ठ संख्या 637 एक स्त्री और बच्चे को छोड़कर शेष सब को जो नौका पर सवार थे ठिकाने लगा दिया। अतएव वे दोनों एक तख्ते पर रह गए। लहरें तख्ते को आगे बढ़ाती रहीं। जब वायु ने उस तख्ते को किनारे लगा दिया तो उन दोनों के बच जाने से मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तत्पश्चात तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने माता को मौत की नींद सुला दिया। बच्चे को एकाकी देखकर मुझे अत्यधिक दया आई। इसके अनंतर मैंने कई मृत्यु देखी, परंतु अभी तक मैं उस बच्चे के अकेले रहने का दुख भूल नहीं सका हूँ। खुदा ने फरमाया कि मैंने अपने फजल एक से लहर को आदेश दिया कि उसे एक घने वन में डाल दे। उस वन में स्वच्छ निर्मल तथा मधुर पानी का सोता बहता था। उस स्थान पर मैंने उसका लालन पालन किया। मैंने वहां अनेक मधुर कंठ पक्षी भेजे जो प्रतिपल चहचहा कर उसका जी बहलाते थे। मैंने सूर्य को आज्ञा दी कि अपने चिलचिलाते धूप से उसे न जलाए। वायु को आदेश दिया कि उस पर से धीरे धीरे गुजरे। बादल को हुक्म दिया कि उस पर वर्षा न करे और बिजली को कहा कि उसको अपनी तेजी न दिखाए। एक मादा भेड़िए ने उसी समय बच्चे दिए थे। मैंने उसको हुक्म दिया कि तू उस बच्चे को दूध पिला। अतः उसने दूध पिलाया और उसकी देखभाल भी की। वह जवान मोटा ताजा और बहादुर हो गया, परंतु कालोपरांत वही नमरूद निकला और उसने मेरे खलील को आग में झोंका। अब वह काफिर होकर लोगों को मेरी राह से फेरता है, अभिमान से अभिभूत है और अपने आप को खुदा कहता है। 2 कवि जायसी आखिरी कलाम में लिखते हैं, इब्राहिम कह कस न कहत्यों, बात कहे बिन मैं न रहत्यों, मोसों खेल बंध जो खेला, सर रची बांधी अगिन महमेला, तहां अगिन हुत भई फुलवारी, अप डर डरों न पर ही संभारी। 3-1 अनुकंपा, 2 मसनवी मौलवी मानवी, पैराहन यूसुफी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, भाग 6, पृष्ठ 315-320। 3 जायसी ग्रंथावली आखिरी कलाम, पृष्ठ 325, पृष्ठ संख्या 638। हजरत अय्यूब, प्रसिद्धि है कि उनमें अपरिमित धैर्य था। वे बनी इज़राइल नामक जाति के एक अत्यंत धैर्यशाली पैगंबर थे। उनके पास अतुल धन संपत्ति थी और वे संतान से भी संपन्न थे। एक बार उनकी खेती बाढ़ से नष्ट भ्रष्ट हो गई। उन्होंने तनिक भी चिंता न की, सब पशु मर गए उफ तक न की, सारी संतान मकान के नीचे दब गई आह तक न की। वे रोगग्रस्त हो गए, शरीर में कीड़े पड़ गए, परंतु उनके माथे पर बल न पड़ा। वे अहर्निश ईश्वर आराधना में तल्लीन रहे और कभी भी गिला न किया। अंततः प्रभु की कृपा से स्वस्थ हो गए और पहले से भी अधिक धनी मानी बन गए। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार लिखते हैं, बाज अयूबे सितम कशरा निगर, मांदा दर किरमानो किरमानेश्वर। 1 अर्थात पीड़ित हजरत अयूब की ओर देख, वे कीड़ों में रहे और कीड़े भी ऐसे जिनके डंक थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, सरजा बीर सिंध चढ़ी गाजा, आह सौह गोरा के बाजा, पहलवान सो बखाना बली, मदती मीर हमजा ओ अली, मदती अयूब शीस चढ़ी कोपे, राम लखन जिम नाउ अलोपे। 2 अयूब साधुता और धर्मपरायणता के साथ सहने के उपमान हैं, जैसे कष्ट राम लक्ष्मण ने सहे थे। 3-1 मंती कुत्ते, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 10। 2 पद्मावत, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1963 ईस्वी, छंद 635, पृष्ठ 521। 3 पद्मावत, संपादक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, चिरगांव, संवत 2012, विक्रम, पृष्ठ 695, टिप्पणी 3, पृष्ठ संख्या 639। हजरत दाऊद की कंठ मधुरता। हजरत दाऊद एक अत्यधिक मधुर कंठ थे। प्रसिद्धि है कि जब वे खुदा के स्तुति के गीत गाते थे तो सब मस्ती में झूम उठते थे। पक्षी एकत्रित हो जाते थे, नदी का प्रवाह सुस्त पड़ जाता था और वायु में मत्तता उत्पन्न हो जाती थी। सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बुलबुल को संबोधित करते हुए ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार कहते हैं, खुश बनाल अस दर्दे दिल दाऊद वार, ताकुनंदत हर नफस सदजा निसार। 2 अर्थात हे बुलबुल, तू हजरत दाऊद की भांति अत्यधिक तड़प से गा, ताकि प्रत्येक प्राणी तुझ पर अपने प्राणों को न्योछावर कर दे। ख्वाजा हाफिज लिखते हैं, बर्दाश्ता अंध सौते दाऊद, मुर्गाने चमन से आशियाना। 3 अर्थात उपवन के पक्षियों ने नीर से हजरत दाऊद की सी मधुर ध्वनि उठाई है। मजामीरे दाऊद, नगमाए दाऊद, लहने दाऊदी आदि शब्द भी हजरत दाऊद की कंठ मधुरता की ओर संकेत करते हैं। हजरत दाऊद और लोहा। प्रसिद्धि है कि हजरत दाऊद के हाथ में लोहा आते ही मोम बन जाता था। वे उस लोहे की जिरह कवच आसानी से बना लेते थे। फारसी कवियों ने इस प्रसिद्धि का उल्लेख बार बार किया है। एक, वे हजरत सुलेमान के बेटे और यहूदियों के नबी थे। उन पर आसमानी किताब जबूर साम्स ऑफ डेविड उतरी थी। दो, मंथिक उत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 38। तीन, दीवान हाफिज मतबा मजीदी कानपुर पृष्ठ 457 पृष्ठ संख्या 640। कुछ उदाहरण क, बाज दाऊदे जिरिहगर राह निगर मोम करदा आहन अस्तफे जिगर। एक, अर्थात कवच बनाने वाले हजरत दाऊद को देख उसने अपने जिगर की गर्मी से लोहे को मोम बना दिया। ख, गर शबद ई आहनत चू मोम नर्म तू शबी दर इश्क चू दाऊद गर्म। दो, अर्थात यदि यह तेरा लोहा नफस मोम की भांति नर्म हो जाएगा तो तू दिव्य प्रेम में हजरत दाऊद के समान उच्च स्थान प्राप्त कर लेगा। हजरत जकरिया, हजरत जकरिया अपने समय के प्रसिद्ध पैगंबर थे। जब यहूदियों ने उनके वध करने का निश्चय किया तो वे प्राण लेकर भागे। रास्ते में एक बड़ का वृक्ष आ गया। प्रभु की कृपा से वह वृक्ष फट गया और हजरत जकरिया उसमें छिप गए। वृक्ष पूर्ववत हो गया किंतु उनके वस्त्र का एक कोना बाहर रह गया जिससे विरोधियों को विदित हो गया कि वे उस वृक्ष में छिपे हुए हैं। उन्होंने आरे से वृक्ष को काट कर हजरत जकरिया का नृशंसता पूर्वक वध कर दिया। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार लिखते हैं, बाज जकरिया की दिल पुरजोश शुद्ध बर्रा बरसर दम नजद खामोश शुद्ध। तीन, अर्थात हजरत जकरिया के दिल में जब जोश उठा तो सिर पर आरा चलवा लिया, बोले नहीं और मौन रहे। एक, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंतिक उत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 11। दो, वही पृष्ठ 39। तीन, मंतिक उत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 11 पृष्ठ संख्या 641। हजरत सालिह समूद जाति के एक सुप्रसिद्ध पैगंबर का नाम है। उन्होंने केशरवाद का प्रचार किया परंतु सजातियों ने उनसे सर्वप्रथम कोई चमत्कार दिखाने को कहा। इस पर उन्होंने एक पत्थर में से बच्चे सहित एक ऊंटनी उत्पन्न कर दी, परंतु फिर भी उनमें से कुछ निरंतर उनका विरोध करते रहे। विरोधियों ने ऊंटनी की चारों टांगे काट दी और बच्चे को मार दिया। यह देखकर पल भर में ही प्रभु ने उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मौलाना जामी उसी ऊँटनी की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं, दरा वादी की सालिह नाका कशबूद बयादे महमिलश बा नाका खुशबूद। एक, अर्थात उस घाटी में जहाँ हजरत सालिह ऊँटनी को चलाने वाले थे, हजरत मोहम्मद की ऊँटनी के कजावे को याद कर करके वे अपनी ऊँटनी के साथ खुश थे। हजरत उमर, प्रसिद्धि है कि इस्लाम धर्म के द्वितीय खलीफा सन 634-644 ईस्वी दो हजरत उमर बहुत न्यायप्रिय थे। एक बार उनके लाडले बेटे ने मदिरा पान कर लिया। जब उन्हें पता चला तो वे बहुत लाल पीले हुए। उन्होंने अन्य शराबियों की भांति अपने पुत्र को भी 80 कोड़ों का दंड दिया और स्वयं कोड़े लगाना प्रारंभ किया। कुछ कोड़े खाकर उनके बेटे के वस्त्र तार तार हो गए, रक्त से समस्त शरीर तर बतर हो गया। यद्यपि पुत्र के आंसुओं का तार बंध गया तथापि पिता की आंखों से एक आंसू भी न निकला। एक, यूसुफ जुलेखा कानपुर सन 1896 ईस्वी पृष्ठ 15। दो, 13 हिजरी 23 हिजरी अल्लामह मुहैउद्दीन मिस्री तारीख इस्लाम उर्दू अनुवाद लखनऊ भाग 2 पृष्ठ 21-34। 80वां कोड़ा पढ़ने पृष्ठ संख्या 642 से पहले ही बेटे ने दम तोड़ दिया। अतः सबके साथ एक सा न्याय करने से हजरत उमर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख करते हुए लिखा है, दर उमर गर मैल बूदे जर्रा कै पिशर कुश्ते बजख्मे दुर्रा। एक, अर्थात यदि हजरत उमर को अपने बेटे का जरा भी लिहाज होता तो वह अपने बेटे को कोड़े मार मार कर मौत की नींद क्यों सुला देता। हिंदी सूफी कवियों ने भी हजरत उमर की न्यायशीलता का वर्णन किया है। कुछ उदाहरण क, उमर उनसो दूसर ठाऊं जेहके अदल क नाहे आऊं। दो, ख, अदल जो कीन उमर के नाई भई अहा सगरी दुनियाई। तीन, ग, बाबर शाह छत्रपति राजा राजपाट उनकह विधि साजा मुलक सुलेमा कर ओहि दीन्हा अदल दुनी उमर जस कीन्हा। चार, घ, दुर्जे उमर नियाऊ के राजा जय सुत पितै हना विधि काजा। पाँच, ड, दूजे उमर न्याऊ प्रतिपारा जे विध कारण सुतहि संघारा। छ, एक मंतिक उत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 29। दो कुतुबन कृत मृगावती संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 67। तीन जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 6। चार जायसी ग्रंथावली आखिरी कलाम पृष्ठ 341। पाँच मंझन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 9। छः उस्मान चित्रावली काशी नागरी पिचारणी सभा सन 1912 ईस्वी पृष्ठ 6 पृष्ठ संख्या 643 पृष्ठ संख्या 642। हजरत यूनुस ने निनवा नामक नगर में लोगों में एक ईश्वरवाद का प्रचार करने का प्रयास किया किंतु सफलीभूत न हुए। लोगों से तंग आकर उन्होंने पृष्ठ संख्या 643 निनवा को छोड़ दिया। जब वे नौका पर सवार होकर जा रहे थे तो वह भीषण तूफान आ गया। उनके कहने पर नाविकों ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया। एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। कुछ समय के पश्चात मछली ने उन्हें उगल दिया। जब वे बाहर आए तो बहुत अशक्त हो गए थे, वे चल भी नहीं सकते थे। देखते ही देखते वहां वह कद्दू की बेल उगी जिसकी छाया में उनका पालन पोषण हुआ। जंगल की एक हरिणी उनको दूध पिलाती रही। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार लिखते हैं, बाज यूनस राह निगर गुम गश्त राह आमदा अजमह बमाही चंद गाह। एक अर्थात हजरत यूनुस के रास्ता भूलने को देख वे चांद श्रेष्ठ स्थान से कुछ समय के लिए मछली के पेट में आ गए। हूर प्रसिद्धि है कि हूरें परम रूपवती स्वर्गांगनाएं बेहिश्तियों स्वर्ग के वासियों की सेवा शुश्रूषा में होंगी। उदाहरण एक जाहिद अगर बहुरो कुसूरस्तो उम्मीदवार मारा शराब खाना कुसूरस्तो यार हूर। दो अर्थात यदि जाहिद संयमी हूर और बिहिष्ट स्वर्ग के भवनों की आशा रखता है तो रखने दो। हमारे लिए तो इस संसार ही में शराब खाना और मकान है तथा हमारा प्रिय ही हूर है। दो फर्दा शराबे कौसरो हूर अजबराए मास्त हमरूज नीज दिलबरे महरुए ओजामे। तीन एक मंतिक उत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 10। दो दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 222। तीन दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 426। अर्थात कल को अगली दुनिया यानी स्वर्ग में हमारे लिए कौसर की पृष्ठ संख्या 644 शराब होगी और हूरे होंगी और आज भी चांद के से मुखड़े वाला साकी है और शराब का प्याला भी। पृष्ठ संख्या 644 शराब होगी और हूरे होंगी और आज भी चांद के से मुखड़े वाला साकी है और शराब का प्याला भी। हिंदी सूफी कवि जायसी लिखते हैं, 40 सी हूरे सोई और संग लाग बियाही जोई। एक भारतीय साहित्य में इस परम सुंदरी देवांगना के लिए अप्सरा शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी सूफी कवियों ने अछरी 2 अप्सरा 3 आछरी 4 आदि शब्दों का व्यवहार किया है। क सेव करही दासी चहु पासा अछरी जानु इंद्र कबिलासा। पाँच ख रोवही इंद्र अप्सरा ओ बासुकी पतार रोवही हस्ती ओ घोरा ठाड़े रोवही अबर पुकार। छ ग तिन्ह मह एक रूप गुण आगरी परगट भागी लीलार तेहि कन्या एक कन्या आछरी कै अवतार। सात मौलाना दाऊद दलमई ने चंदायन में अक्षर शब्द का प्रयोग भी किया है। घ करण कहू ओ लखन बिसेखी अक्षर रूप सो तिरिया देखी। आठ एक जैसी ग्रंथावली आखिरी कलाम पृष्ठ 358। दो अक्षरी अप्सरस अप्सरा। तीन अप्सरा अप्सरस अप्सरा। चार आछरी अक्षरी अप्सरस अप्सरा। पाँच जैसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 253। छः कुतुबन कृत मृगावती संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 200। सात मंझन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 209। आठ मौलाना दाऊद दलमई कृत चंदायन संपादक श्री परमेश्वरी लाल गुप्त दिल्ली सन 1964 ईस्वी पृष्ठ 116।